بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام خواتین اسلام اور بھائیوں اس دنیا میں ہم ایک خاص مقصد سے بھیجے گئے ہیں یعنی ہمارا مقصد متعین کر کے ہمیں بھیجا گیا ہے تھوڑا تھوڑا ہی کرنا ہے تو ہم اسی کرنا ہے جس کر رہے تھے
Respected, بسم اللہ الرحمن الرحیم Respected sisters and brothers We have been sent into this dunya with a purpose and the purpose that we have been sent in has already been defined for us
اور وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے
And Allah subhanahu wa ta'ala has clearly mentioned that in the Quran.
اور یہ فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
And Allah subhanahu wa ta'ala said the close meaning of it that I have created the insan and the jinn only for my worship.
یہ صرف کے معنی پیدا کرنے کے لیے جو عربی کا گرامر ہے وہ ویسا ہی استعمال کیا گیا ہے یہاں پر جیسے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین میں استعمال کیا گیا
He says that here that Allah subhanahu wa ta'ala is emphasizing that only for my worship the way this sentence has been framed as only is very similar to what Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in another ayah
کہ نہیں پیدا کیا ہے میں نے انسانوں کو اور جنات کو مگر عبادت کے لیے جیسے حضور کے بارے میں فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت سارے عالم والوں کے لیے
says that we have not created insan and jinn but for ibadat and similarly it said that we have not sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but as a mercy to the mankind
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے رئیس المفسرین کہلائے تفسیر میں بہت ان کو اسپیشلٹی حاصل تھی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ because of the bulk of the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was known as the chief of mufassirin the people who wrote the tafsir and he had a speciality in it
انہوں نے فرمایا کہ عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی
and he said that ibadat cannot be done without the recognition and marifat of Allah subhanahu wa ta'ala
اس لیے لیابدون کا اصل ترجمہ لیارفون ہے
and that's why he says that لیابدون that can be translated لیارفون
کہ میں نے انسانوں اور جنات کو میری پہچان کے لیے بنایا
Says, I have created the human beings and jinn for my recognition.
اور وہی لفظ اللہ نے کیوں استعمال نہیں فرمایا وہ بہت خاص سمجھنے کی بات ہے
And why Allah subhanahu wa ta'ala didn't use the word recognition, it is very important for us to understand that.
انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے اور پھر کرنے کا پابند نہیں ہوتا
It says that the way the human being's brain is, in some situations, he understands things, but it's not necessary that he do it.
جیسے ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں
Like in our life, for many things, we understand something and we do something different.
تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ میں نے پہچان لیا اللہ پاک کو
And that's why it says that in this ayat, Allah hasn't used this word recognition because it's not so that insan will say that I have already recognized Allah.
اور اس کے بعد آزادی سے زندگی گزارنے
And after that, he can live free life.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ پہچان معتبر ہے جو میری عبادت پہ ڈالے
And it says that that recognition is valuable which puts you onto my obedience.
اس لیے لیارفون کا لفظ خود استعمال نہیں فرمایا لیابدون کا استعمال فرمایا
That's why he hasn't used the word لیارفون الا لیارفون but has used the word الا لیابدون
تو معلوم ہوا کہ پہچاننا ہے اللہ پاک کو اور ایسے پہچاننا ہے کہ ان کی عبادت پر ہم آ جائیں
That's why from this what we know is we have to recognize Allah subhanahu wa ta'ala and recognize in such a way that we come on to his obedience.
Isme do lafz hote hain.
And there are two words in this.
Liyabudun ke tarjume mein.
In the translation of liyabudun.
Ek ibadat aur ek ubudiyat.
There is ibadat and ubudiyat.
عبادت جو ہے ان خاص کاموں کے کرنے کو کہتے ہیں جو ایز عبادت ہمارے لیے مقرر کیے گئے.
And عبادت are those actions which have been given to us specifically as actions of عبادت.
نماز، روزہ، زکات، حج یہ عبادتیں ہیں.
صلاة، فاسٹنگ اینڈ حج، زکات، دیز آر عبادت.
عمرہ، قربانی.
عمرہ اینڈ سیکریفائس.
اعتکاف.
اعتکاف ان دا مسجد.
نظر.
And looking, giving nazar.
یہ عبادتیں ہیں.
These are ibadats and worship.
عبودیت جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ جو بولے، جب بولے، جیسا بولے ویسا کرنا.
And عبودیت is to whatever has been said, whenever has been said, in however form it was said, doing it exactly that way, that is عبودیت.
ایک ہوتی ہے جاب اور ایک ہوتا ہے نوکر.
There is one is job and the other one is servant.
جاب کے اندر ٹائم مقرر ہوتا ہے.
In job there is a fixed time.
اور کام مقرر ہوتا ہے.
And the work is also fixed.
نوکر کے لیے ٹائم مقرر نہیں ہوتا، کام مقرر نہیں ہوتا.
And for servant there is no bound time or job.
اس کو جب بولا جائے، جو بولا جائے، جیسے بولا جائے کرنا ہوتا ہے.
And that's why if a servant is basically whenever whatever he said to him and whenever it's said to him he has to do it.
اس کا جاب ڈسکرپشن جو ہے نا بنا ہوا نہیں ہوتا لفظوں میں.
And there is no fixed job description.
یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہے.
So this is mentioned and this is not mentioned.
چونکہ اس میں بعض مرتبہ بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے.
And because there's a lot of misunderstanding because of this.
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو میری لسٹ میں نہیں ہے.
And for small things a slave can say that this is not in my list.
حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں ایک لطیفہ نقل فرمایا.
تھانوی رحمتہ اللہ علیہ has mentioned an incident in one of his bayans.
کہ ان کا ایک نوکر تھا.
He had a servant.
اس نے اپنے نواب صاحب سے کہہ دیا تھا کہ حضرت جو کام میری ذمہ میں ہے نا وہ لکھ کے دے دو.
He said that he told to his master that give me the list of all things that I am responsible for.
تو انہوں نے اس کی سہولت کے واسطے لکھوا دی کچھ چیزیں.
And for his benefit the Nawab sahab kind of gave the list of things.
تو نواب صاحب نے فہرست لکھ دی.
And the Nawab sahab has given the list of the things that the servant is supposed to do.
تو وہ ایک سفر میں جا رہے تھے.
He was going on a travel.
تو جس سواری کے اوپر سفر میں جا رہے تھے نواب صاحب کے سامان کی ایک گٹھڑی جو ہے نا وہ گر گئی.
The conveyance he was going on from on that he had something belonging to him that fell down from that conveyance.
اچھا اس کو نوکر نے دیکھا، نواب صاحب نے نہیں دیکھا.
And the servant has seen it but the nawab didn't see it.
تو جب منزل پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرا وہ سامان دو.
After they reached the destination the master told him give me that stuff.
تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو راستے میں گر گیا.
And the servant said that other that has fell in the path in the way.
تو کہا کہ بھائی تو پھر مجھے بھی نہیں بولا اور اٹھایا بھی نہیں.
He said that why didn't you tell me and even you didn't pick it up.
کہنے لگے جیسے ہی گرا میں نے لسٹ دیکھی اس میں تھا تو نہیں ہے.
He said that immediately when I saw that falling from it I looked at the list of things that I am supposed to do and it was not included in the list that I have to pick it up.
اچھا وہ اتنا سمجھدار تھا کہ حضرت نے یہ سوچا، نواب صاحب نے سوچا کہ بھائی کچھ نہ کچھ اس کو سمجھا دینا چاہیے، تو انہوں نے لکھا دیا کہ آئندہ سے راستے میں کوئی چیز گرے تو اٹھا لینا.
نواب صاحب لرننگ لیسن فرام دس ہی ایڈڈ ون مور آئٹم آن دی لسٹ دیٹ اف اینی تھنگ فالز لیٹر آن ان دی فیوچر یو نیڈ ٹو پک اٹ اپ.
ہماری اگلے سفر میں دیکھا تو کیا ہے، سامان کے ساتھ ایک سامان اور ہے.
He said that in the next safar he saw that along with all the other belongings there is an extra belonging.
تو بولے یہ کیا ہے؟
Then he asked what is this?
تو بولے یہ گھوڑے کی لید.
He said that excrete of the horse.
بولے یہ کیوں لیا؟
He said why did you pick this up?
تو بولے اس میں لکھا ہوا تھا جو گر جائے اٹھا لینا.
Because it was there in the list that whatever falls down you need to pick it up. This is your job description.
تو جاب ڈسکرپشن میں ایسا ہوتا ہے.
سو اف یو ہیو اے جاب ڈسکرپشن دس از واٹ ہیپنز.
تو اس لیے لیابودون کا ترجمہ عبودیت سے کیا ہے مفسرین نے.
دیٹس وائی لیابودون'س ٹرانسلیشن ہیز بین ڈن وِد عبودیت ناٹ عبادت.
ہاں کہ جب بولیں، جو بولیں، جیسا بولیں ویسا کرنا.
ہی سیز دیٹ واٹ ایور ہیز بین سیڈ وین ایور ہیز بین سیڈ ٹو واٹ ایور ایکسٹینٹ ہیز بین سیڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن.
تو اس لیے اللہ پاک نے یہ مقرر فرما دیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں مرد اور عورت کو ایک پابندی ہے.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala has defined this in 24 hours of life there is some boundage and there is some bounding for the men and women.
وہ پابندی جو ہے وہ ماننے کی ہے.
And that is something that we need to obey.
وہ جو ہے نا سرنڈر کرنے کی ہے.
And those restrictions are for surrender to Allah subhanahu wa ta'ala.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے مطلب میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطلب میں حضرات صحابہ کو جو سمجھا دیا تھا وہ یہ یقین تھا.
He says that in the translation of لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught to the صحابہ was this belief.
تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ کے لیے شروع دن سے ہی یہ طے شدہ ہو گیا تھا یہ معاملہ کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اپنی مرضی نہیں چلانی ہوگی.
So that then the result of that explanation of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم right from the day one was the Sahaba رضی اللہ عنہ اجمعین understood that once we believe in this kalima, I cannot do what I feel like doing.
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کیسا ہے وہ بتا دیا جائے.
So he said, because there is no ilah other than Allah subhanahu wa ta'ala, then it is necessary to define how Allah subhanahu wa ta'ala.
To phir Allah ka ta'aruf aise farmaya Allah Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne ke hazrat sahaba ke liye 24 ghante Allah Pak unke samne the.
That's why the ta'aruf and the recognition that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put in front of sahaba radhiyallahu anhu ajmain was such that Allah subhanahu wa ta'ala was in front of them 24 hours.
Quran Pak mein itna khol ke bayan kiya gaya, itni tafseel se bayan kiya gaya isko کہ ایک آدمی جو جو, جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے قرآن پاک کے مضامین کو سنے اور احادیث مبارکہ کے مضامین کو سنے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے بھر گئے تھے اور اللہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہونے کے استحضار سے ہمیشہ زندہ ہو گئے تھے.
To such an extent to the ayats of the Quran and the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that in the sahaba radhiyallahu anhu ajmain, because of this being repeated again and again, their hearts were completely filled with the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, and they has this realization that Allah subhanahu wa ta'ala is with them all the time.
Ek martaba sahaba ikram zor se yani sahaba ikram ko ek shubha ye hua ke Allah tbarak wa ta'ala dur hain ke hum unko pukare یا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے جی میں بات کریں.
One صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین has this doubt that is Allah subhanahu wa ta'ala far away from us that we need to shout, or is Allah subhanahu wa ta'ala is very close to us that we can whisper to him and talk in ourselves.
تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں.
And so that's why Allah subhanahu wa ta'ala then revealed the ayat of the Quran in the close meaning of which that when my servants ask where am I close, this is tell them that I'm very close to them.
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہیں یا نہیں, ہمیشہ یہ سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں تو کیسے قریب ہیں.
He says that this, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ says, this is never a question whether Allah subhanahu wa ta'ala is close or far. If the question is, if Allah subhanahu wa ta'ala is close, how close? Since Allah subhanahu wa ta'ala is close, then how close he is?
کیونکہ دور تو ہے نہیں وہ کسی سے.
Because he is never far away from anything.
جتنی چیزیں ہمیں دور لگتی ہیں اللہ ان سے بھی قریب ہے.
Those things that we see far from us, Allah subhanahu wa ta'ala is close with those things as well.
اور ہم سے بھی قریب ہے.
And he is close with us as well.
صرف یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ قریب کیسے ہیں.
It's the only thing that we need to understand that how close he is.
یہ نہیں سمجھنا ہوتا کہ وہ قریب ہیں کیا دور ہیں.
It's not the thing that we need to understand whether he is close or far.
حق تعالی شانو اتنے بڑے ہیں, اتنے عظیم ہیں کہ ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کی وجہ سے کوئی چیز سے بھی وہ دور نہیں ہو سکتے ہیں.
It says the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is so great that because of his greatness he can never be far from anything.
آسمان, زمین, عرش, فرش, جنت اور جہنم, چاند, سورج, کہکشائیں, ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہم سے دور ہیں. ہم سے اللہ جتنے قریب ہیں ان سے بھی اللہ اتنے قریب ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کتنے عظیم ہیں.
So he says that the skies and earths and Jannah and Jahannam and Arsh and even the universe and galaxies, we see them so far away from us. But even though these things are far away from us, that Allah subhanahu wa ta'ala is still very close to them.
Baadhi cheeze samajhne ki sahulat ke waaste bahut simple bhi hoti hain ki agar thoda sa zehen hum wasi kar sake to wo humse bahut kareeb ho jata hai, humko samajhna bada aasan hota hai.
He says that sometimes it is very difficult for us to understand things, but if we really expand our thinking and imagination, it becomes easy for us to understand them.
Misal ke taur par yahan se Makkah Mukarrama bahut dur hai.
For example, Makkah Mukarrama is little far from here.
Madina Munawwara bahut dur hai.
Madina Munawwara is also far from here.
ہم لوگ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں اور جو ہیں دوسرے عرب وغیرہ ہیں یہاں پہ, تو ان کو اپنے اپنے ملک کو یہاں سے ان کے والدین سے ملنا کرنا لگتا بہت دور ہے.
This is the people who are from India, Pakistan or the other Arab countries, if you have to go and meet our parents, we feel like it's far from here.
لیکن یہی سوال اگر آپ زمین سے پوچھیں,
and you just ask the same question with the earth,
کہ تیرے سے مکہ کتنی دور ہے اور امریکہ کتنی دور ہے,
you just ask from the earth that how far is Makkah from you and how far is America from you,
تو زمین کیا بولے گی,
what will the earth say?
तो जमीन कहेगी कि भाई दोनों भी मेरे गोद में है.
It both will say that both of them are in my lap.
उसके लिए जैसे मक्का है उसके लिए ऐसे अमेरिका है.
For the earth as it is मक्का, similarly America from distance perspective.
अब जमीन के लिए चांद दूर है.
But from the earth the moon is far.
लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम से पूछेंगे कि चांद से जमीन कितनी दूर है तेरे पास.
So if you ask the solar system that how far is earth from the moon,
वो तो मेरे गोद में है दोनों भी.
The solar system will say both of them in my lap.
ऐसे ही अल्लाह के नूर से पूरी कायनात भरी हुई है.
Similarly, the whole universe is filled with the nur of Allah.
अल्लाह नूर समावात वल अर्ध.
It says Allah nur of समावात and अर्ध.
कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है.
In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says the close meaning of it that Allah subhanahu wa ta'ala is the nur of the heavens and the earth.
और नूर की तारीफ ये करते हैं सूफिया.
And Sufia translate nur as
ke zahirun li aynihi muzhirun li ghayrihi, khud se zahir ho ke dusre ko zahir karna.
It's something that comes out itself and it will also make others things to be visible.
Isi wajah se jab hum light chalu karte hain to light jalegi to hi dikhta hai humko sab.
That's why when we switch on the light,
andhere mein
the light will come up and then it will show everything that is there
in darkness.
In the
agar andhera hoga to baat ho rahi hai na. तो नूर की खसूसियत ये होती है कि वो जाहिर होगा तो ही जाहिर करेगा.
द स्पेशलिटी ऑफ नूर इज व्हेन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर थिंग्स.
कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह पर अल्लाह की सिफत नूर का असर है.
So is it that everything that we see in the universe is the effect of the sifat of nur of Allah subhanahu wa ta'ala.
और कायनात के जर्रे जर्रे से अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नूर से कायनात का जर्रा जर्रा झांक रहा है.
It says that thing, every particle in the whole universe is speaking out from the nur of Allah subhanahu wa ta'ala.
इसलिए हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में यहीं से शुरू फरमाया है बात को कि वजहुल्लाह के नूर से आसमान और जमीन जगमगा रहे हैं.
शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह has started his book saying that the earth and the skies are sparkling with the nur of Allah subhanahu wa ta'ala.
क्योंकि कोई चीज अल्लाह से दूर नहीं हो सकती.
बिकॉज नथिंग कैन बी फार फ्रॉम अल्लाह.
अल्लाह पाक जिस अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं जिनकी बंदगी हमें सिखाई जा रही है कलमे से वो अल्लाह करीब होते हैं.
दैट अल्लाह सुभान व तआला हु वी हैव ईमान ऑन एंड वी हैव बीन टॉट टू डू हिज वर्शिप.
अंधेरे में भी उजाले में भी.
बोथ इन डार्कनेस एंड इन लाइट.
मस्जिद में भी घर में भी.
इन मस्जिद एंड होम.
अपन हम कहीं बाहर गए हुए हो तब भी और न गए हुए हो तब भी.
इवन व्हेन वी आर आउट एंड वी आर नॉट इवन देन.
कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यालमु मुतकल्लबकुम व मसवाकुम. तुम्हारे बाहर घूमने फिरने में और तुम्हारे अपने घर में अपनी जगह रहने में कोई फर्क नहीं हमारे लिए.
इट सेज अल्लाह सुब्हानहू इन द कुरान इट सेज द क्लोज मीनिंग ऑफ फितर वेदर यू आर रोमिंग आउटसाइड योर हाउस और इन द हाउस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
ये इल्म दिया गया.
एंड दिस इज द नॉलेज दैट इज गिवन टू अस.
फिर उसके बाद इससे आगे के बारे में फरमाया गया कि ये मत समझना कि अगर कभी तुम तीन मिलके बात कर रहे हो तो चौथा कोई नहीं.
And then beyond this, we have been explained that don't never think that if you are three who are talking, don't think that there is no, we don't have the fourth one.
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تم میں سے تین کوئی بات کرے تو چوتھا وہ ہے.
And Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala is a close meaning of it. When three of you talk, the fourth one is Allah subhanahu wa ta'ala.
جب چار بات کر رہے ہوں تو پانچواں وہ ہے.
When four are talking, the fifth one is Allah subhanahu wa ta'ala.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. जब बात करें तो वो होता है जहां कहीं तुम हो.
He says that little over and little less than this, whenever you are talking, Allah subhanahu wa ta'ala will be with you wherever you are.
कभी भी कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला से छुपना नहीं हो सकता.
He says that never ever we can hide from Allah subhanahu wa ta'ala.
हजरत साहबे किराम के लिए ये सूरत हाल हो गई थी कि इस इल्म के मिलने के बाद में उनको अपने से शर्म आने लगी थी.
This is, after getting this nil, sahaba radhiyallahu anhu main used to shy from them.
कपड़े बदलना मुश्किल हो गया
था. It was difficult for them to change clothes.
तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनको इल्म ये दिया कि तुम्हारे जो अपने मामलात होते हैं तुम उसमें बेतकल्लुफ ही से कर लो क्योंकि जब तुम कपड़े पहने हुए होते हो तब भी छुपे हुए नहीं होते हो.
That's why just to put them at ease, it was told to them that whatever personal things you need to do, do it. Even when you are having clothes on you, you are not hidden from Allah subhanahu wa ta'ala.
तो जब उनके लिए कपड़े पहनना नहीं पहनना वो चीज किसी चीज से कोई चीज उनसे छुपी हुई है ही नहीं.
There is nothing that is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala.
एक जगह पर अल्लाह ने कुरान पाक में यह इल्म दिया कि وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِمْ وَمَا تَتْلُو مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. نہیں تم کسی حالت میں ہوتے ہو. کسی حالت میں تم نہیں ہوتے ہو اور نہ تم کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اور نہ کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم وہاں موجود ہیں.
In the different places Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that you don't do any amal or you don't do the tilawat of the Quran, you don't do anything but Allah subhanahu wa ta'ala is there with you.
हाँ, कुन्ना यहाँ पर थे के माने में नहीं होता, कुन्ना काना ताम्मा होता ये, मतलब हैं, हम हैं मौजूद.
It's not that Allah subhanahu wa ta'ala is saying I was with you, but rather here emphasizing saying that I am there with you.
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ. तुम्हारे परवरदिगार से कोई चीज, कोई जर्रा गायब नहीं होता आसमानों में जमीनों में, ना जर्रा ना जर्रे से कोई चीज छोटी ना उससे बड़ी.
Allah subhanahu wa ta'ala says that anything that is in the universe, even if it's like a particle worth, it is not hidden from Allah subhanahu wa ta'ala, not even a particle or even something less than the particle.
तो ईमान, ईमानियत के मुजाकरे से, दावत में ईमान की मेहनत से मकसूद ये होता है कि जिस अल्लाह पर हम ईमान लाते हैं उस अल्लाह की सिफात को और अल्लाह तबारक व ताला के तारुफ पर जो चीजें बताई और समझाई गई हैं कुरान और हदीस में, उनका ऐसा मुजाकरा करना कि उससे अल्लाह तबारक व ताला की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बड़ाई हमारे दिल पर छा जाए.
So through the effort of dawah, the muzakarah of iman about the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, the qualities and greatness of Allah subhanahu wa ta'ala is done so much that our heart and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the honor of Allah subhanahu wa ta'ala completely encloses us.
Aur ye ghiza ke jaise hai.
And this is like food.
जैसे रोजाना गिजा चाहिए होती है, ऐसे रोजाना ये चीज चाहिए होती है.
As we need food on a daily basis, similarly we also need this muzakara on a daily basis.
वरना इंसान भूलता है.
Otherwise we tend to forget.
इसीलिए रोजाना तालीम का हलका चाहिए.
That's why we need हलका ऑफ तालीम every day.
इसीलिए हज़रत मौलाना साहब साहब फरमा रहे हैं कि रोजाना छह नंबर की छह सिफात का मुजाकरा चाहिए.
That's why मौलाना साहब साहब is saying that every day we need to have 6 points.
बल्कि अब तो वो ये भी फरमा रहे हैं कि रोजाना छह सिफात के बाद में रोजाना तश्कीली बात चाहिए.
It says that's now it's been said that after that 6 points muzakara we need to do tashkili.
रोज नियत की तजदीद होती रहे अल्लाह के दीन की मेहनत की.
सो दैट एवरी डे वी रिन्यू आवर इंटेंशन ऑफ मेकिंग एफर्ट फॉर दीन.
ताकि किसी किस्म की का इंकबाद और तंगी ना आए अल्लाह के दीन की मेहनत में जब अल्लाह के रास्ते में घर के अफराद जाएं तो.
सो दैट्स व्हाई, सो दैट द लेडीज ऑफ द हाउस विल नेवर फील एनी स्ट्रिक्टनेस when the people of the house go out.
जैसे घर के अफराद अगर जॉब के लिए जाते हैं तो कोई तंगी फील नहीं होती.
So that, like you see that the men of the house go to the work, the woman doesn't feel any strictness.
बल्कि खुशी होती है.
But she rather be happy.
बल्कि ना जाए तो बुरा लगता है.
But if the person doesn't out, she feel bad.
कि भाई अब ये नहीं जा रहा है, जॉब इधर उधर हो जाएंगे, फिर हम ये कहाँ से पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट वो पेमेंट, ग्रोसरी कहाँ से आएगी, एक फिकर लग जाती है.
इफ द पर्सन डजंट गो टू द जॉब, द वुमन ऑफ द हाउस गेट वरी दैट इफ ही डजंट गो टू द जॉब, इफ ही लूजेस द जॉब, हाउ आर यू गोइंग टू पे द बिल्स.
तो अल्लाह का काम, अल्लाह के दीन का काम इतना ज्यादा मुअज्जज मोहतरम हो जाए घर के हर फर्द में, मर्दों में और औरतों में, कि जब कोई बंदा अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए काम करे तो ऐसा लगे कि ये तो करना ही है, इसी के लिए तो हम जिंदा हैं.
It says that that muzakara should happen so regularly that every person in the household should have this honor or feel honor when people go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and should have this feeling that we have to do it anyway.
ये चीज आप सहाबे किराम इस पसे मंजर में आप सहाबा और सहाबियात की लाइफ का मुताला करेंगे, उनके हवाल सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा उनके हालात ऐसे क्यों थे जैसे सुनने में आते हैं.
एंड विद दिस बैकग्राउंड इफ यू लुक एट द लाइफ्स ऑफ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम बोथ द वुमेन एंड मेन ऑफ देम, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई देयर लाइफ्स वर लाइक दिस.
क्योंकि उन्होंने अपना जीना मरना अल्लाह के लिए बनाया हुआ था.
बिकॉज़ दे हैव मेड देयर लिविंग एंड देयर बीइंग डेड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
और ये कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाया है.
एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज मेंशन दिस इन द कुरान.
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया है कि आप ये बोलो.
And had made an announcement through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you tell this.
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. आप फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है.
It says the close meaning of which Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say this, that my sacrifice, my salah, my sacrifice, my living and my being dead, this is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मेहनत करने का ये मफहूम होता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं, जैसे अल्लाह हैं वैसे याद रहने लग जाए बंदे को.
He says that from the effort of la ilaha illallah, what is desired is that how Allah subhanahu wa ta'ala is with his attributes, that's how the human being starts remembering him.
Allah har shay ke sath hote hain.
Allah subhanahu wa ta'ala is with everything.
Har shay ko muhit hote hain.
And he is surrounding everything.
Wa huwa bi kulli shay'in muhit, wa har shay ko muhit hain.
And he is surrounding everything.
घेरे हुए होते हैं.
He's around everything.
मुहीत का मतलब ये होता है कि उसको पूरा कवर कर लेना अंदर से भी बाहर से भी.
He says he's encompassing everything both from outside and inside.
क्योंकि एक शय में हजारों लाखों शय होती है ना.
He says because in one thing there are multiple parts and multiple things.
हम जो हैं, हम एक शय नहीं होते.
human being is not just one thing.
He says
in every drop that we have, there are hundreds of thousands of
things.
And just imagine that when Allah subhanahu wa ta'ala is saying that Allah subhanahu wa ta'ala is surrounding every little thing, because
He's around everything.
How is this? Allah subhanahu wa ta'ala made a person understand this. When a person is completely drowning in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that's when Allah subhanahu wa ta'ala make him understand. This is what is said as having the reality of the kalima.
इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना जितना ظاہری طور پر بھی ہے उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना अंदर है, डेप्थ है उसमें.
Is la ilaha illallah, even though you can see the words of it externally, but hundreds and millions of times there is depth in it.
देखने के इतबार से जैसे समंदर की सतह है, लेकिन उसकी गहराई का पता नहीं चलता है कि वो कितना गहरा है.
Like if you see a sea, you can only see the surface of the sea. From it, you cannot imagine how deep that ocean is.
तो जिसको जितना ज्यादा अल्लाह से ताल्लुक होता है और अल्लाह को याद करता है और अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना अंदर उतारते हैं.
So the person who has the, you know, the level of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, love of Allah subhanahu wa ta'ala, proportionately Allah subhanahu wa ta'ala let this person go deep into it.
इसलिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा.
That's why we need to make a lot of effort.
और जितनी भी मेहनत करें कमी है.
And whatever effort we made, it is still less.
और कोई इसकी हद ही नहीं है.
And there is no limit for it.
हाँ, उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की नजदीकी की कोई लिमिट नहीं होती.
And ulama has said that there is no limit to the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala.
साहबे किराम के लिए भी आखिर वक्त तक कोई लिमिट नहीं थी.
And even for sahaba radhiyallahu anhu until the last minute, moment, there was no limit.
कि तुम जितना ज्यादा मेरे करीब आ सकते हो आते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं.
He says that however close you want to get to Allah subhanahu wa ta'ala, get to closer to Allah subhanahu wa ta'ala, there is no limit to it.
ऐसा नहीं होता कि एक लिमिट पर जाके खत्म हो जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं है.
There is no limit like this. You come to a certain point and there is nothing beyond this.
अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद लिमिटेड हो जाते.
And if this happens, then Allah subhanahu wa ta'ala himself will become limited.
तो उनकी जात, उनकी सिफात में कोई लिमिट नहीं.
And in the zat of Allah subhanahu wa ta'ala and the qualities and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no limitation.
हाँ, इसलिए ये नहीं है कि भाई हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह याद हो गया और हमें तो जो है छह सिफात पर मुजाकरा करना भी आ गया और हम छह से वाकिफ हो गए, अब इतना ही है शायद. ऐसी बात नहीं है. अब इसके अंदर तो जाके देखो कि गहराई कितनी है इसकी.
So that it is not that we know that how we know how la ilaha illallah and we know the doing the muzakara of six points and that is it, there is nothing beyond it. No, there is a lot. You just keep going deep into it and see how deep it is.
Sheikh Saadi ek buzurg guzre hain, wo farmate hain ki na husnash ghayat darad na sadira sakhun paya bamirat tishna mustasqi wa darya ham chuna baqi. Na unke husn ki koi intaha hai, na husnash ghayat darad husn نہ ان کے حسن کی کوئی انتہا ہے, نہ سادی بیان کر سکتا ہے. پیاسا جو ہے نا پانی پیتے پیتے مر جائے گا, دریا جوں کا توں باقی رہے گا.
سبحان اللہ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ is one of the poets. He says in Persian couplets, the close meaning of it, there is no limit to the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, that this poet cannot explain that beauty. And he says, the person who is thirsty, he can keep drinking the water until he dies, but the river remains the way it is, it never gets exhausted.
تو اس لیے لا الہ الا اللہ کی اس نور کو, لا الہ الا اللہ کی اس معنویت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے.
He says that to get the noor and to get the essence of la ilaha illallah, we need to make effort.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پاس کتنا لا الہ الا اللہ ہوگا.
He says that we will know that from محمد رسول اللہ that how much la ilaha illallah we have.
حضرت محی الدین ابن عربی ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے مرتبے کو, उनके वो सही मर्तबे को पहचानना तो नबियों के भी बस में नहीं
है. He says that one of the scholars says that to really understand the maqam and martaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even the anbiya alaihissalatu wassalam cannot do it.
क्योंकि फरमाया कि किसी नबी के मर्तबे को कोई वली नहीं पहचान सकता.
He says that a wali cannot recognize the position of a nabi.
इसी तरीके से इमामुल अंबिया के मर्तबे को नबी समझ में नहीं, नबी पूरा नहीं, नबी जो ना इमामुल अंबिया के मर्तबे को ऐसा पूरा नहीं कैच कर सकते.
सिमिलरली द अदर अंबिया अलैहिस्सलाम कैनॉट रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
तो इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत और अपने सिफात और अपने असमा को जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे, हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उनकी इस्तेदादों के मुताबिक खूब पिलाया.
He says that what Allah subhanahu wa ta'ala has given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam about his greatness, about his attributes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has given the teachings of that to Sahaba radhiyallahu anhu ajma'in.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیب اور حضور, یعنی ہمارے لیے غیب غیب ہے نا, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी बातें वही के जरिए से समझाते थे, बताते थे, बताने को फरमाया था, उतनी बातें इसी दुनियावी जिंदगी में अपने पास बुला के दिखाई.
He says that for us, whatever the unseen is unseen, but whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us through the ayats of the Quran and through the wahi, Allah subhanahu wa ta'ala even in this life had taken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and shown him all those things.
इसीलिए रजब के मुबारक महीने में एक बहुत ही अजीम उशान वाकया पेश आया जिसको हम लोग वाकया मेराज के नाम से जानते हैं.
That says that that's why in this month of Rajab a big incident happened we remember as the incident of Miraj.
ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को बताता है.
And this shows the position and मकाम of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
कि अल्लाह तबाराक व तआला ने आपकी क्या शान बनाई.
And how Allah subhanahu wa ta'ala has made him great.
और आपको कितने कमालात अता फरमाए.
And how many things Allah subhanahu wa ta'ala has given to him in attributes.
इतना आपको कमाल दिया कि उस कमाल के बारे में दूसरे इंसान को सोचना भी आसान नहीं.
Allah subhanahu wa ta'ala has given such an excellence to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that for a common person it is not even possible to understand and recognize that.
कितनी बेदारी में यानी अपने अपने जिस्म के साथ हालत बेदारी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात अल्लाह तबारक व तआला मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस ले गए. बैतुल मुकद्दस में कितने वाकयात पेश आए, रास्ते में कितने वाकयात पेश आए, फिर उसके बाद में सारे अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, सारे अंबिया ने खुतबे दिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खुतबे बयान फरमाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा दिया, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, वहां मुलाकातें हुई, तारुफ हुई, फिर उसके बाद में आसमानों का सफर शुरू हुआ.
He says that you know, while Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was fully awake with his physical self, Allah subhanahu wa ta'ala has taken him to the Baitul Maqdis and so many incidents that happened in between where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met Anbiya alaihi salatu wasalam, Anbiya alaihi salatu wasalam gave the khutbas and sermons, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself gave the sermon, and then he led the Anbiya alaihi salatu wasalam in salah, and from there Allah subhanahu wa ta'ala has taken him Miraj.
Abhi Rajab ka mahina aa raha hai, usme jo hai na mukhtalif qisam ke program honge, jalse honge, अपने पास बड़ा रिवाज है इसका, बड़ा जिंदा करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक सुना सुना के. अब यहाँ पे जो है ना ये गलत है वो गलत है, ये रसम है वो रसम है के रिवाज में जो है ना रिवाज से बचने के वास्ते इन चीजों का जिक्र ही छूट गया. उसका नतीजा ये हुआ कि भूल हो गई हमें भी बहुत ज्यादा, वरना अपने दियार के अंदर हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जरा दिल गर्म रहते थे. अगरचे हम गुनाहों में बहुत होते थे लेकिन एक गर्मी मोहब्बत की बहुत होती थी. यहाँ तो ना दिल गर्म है ना गर्मी ही मोहब्बत की है.
He says that in our countries, we see in Rajab, we have so many different programs where the people remind themselves about the Miraj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And unfortunately, in these, you know, country, in this country where we live in, because of this being something inappropriate, we tend to not do this. But at least when these things used to happen in our countries, and our hearts used to be warm with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and unfortunately, because that thing is not happening, we don't have that warmth, and we don't remember these things as well.
फिर आप इसी जिसमें उनसुरी के साथ इस बॉडी के साथ आसमानों पे गए.
And with his physical self, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had gone to heavens.
पहले आसमान का दरवाजा कैसे खुलाया गया उसकी तफसील आपने बताई.
He mentioned that how the door of the first heaven was opened for him.
पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई वो बताया.
And he mentioned like who he met in the first heaven.
फिर दूसरे पे पहला कैसा है वो बताया. पहले और दूसरे में कितना गैप है वो बताया.
And he explained that how the first heaven was and what is the gap between first and second heaven.
फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर छठे पे, फिर सातों आसमानों पे गए.
And he from second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, he went all the way to the seventh.
सिदरतुल मुंतहा गए.
And he went to सिदरतुल मुंतहा.
सिदरतुल मुंतहा की कैफियत बयान फरमाई.
And he explained the details about सिदरतुल
मुंतहा. सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जो नहरें जारी हैं, जो जन्नत की तरफ भी जाती हैं, वो भी जो दुनिया की तरफ जाती हैं, वो भी वो तफसील भी बयान फरमाई.
And the rivers that are coming from the roots of Sidratul Muntaha, the ones that are going into Jannah, the ones that are coming to the earth, he also explained those.
Sidratul Muntaha pe jo farishton ka jamghatta jama ho gaya tha huzur ki ziyarat ke liye wo aapne bayan farmaya.
In Sidratul Muntaha, the huge gathering of the angels came to see Rasulullah sasam to meet him. He also explained about
Sidratul Muntaha, ek darakht ka naam hai, us darakht ke patton ki kaifiyat huzur ne hadith mein bayan farmaya.
Sidratul Muntaha is a tree and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave the detailed description of the leaves of that tree.
Uske phal ki kaifiyat aapne bayan farmayi.
He explained the description of the fruits of that tree.
Phir Allah ने सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए.
एंड अल्लाह सुब्हान व तआला हैज टेकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियॉन्ड सिदरतुल मुंतहा.
जहां पर जिब्राइल अलैहि सलातो व सलाम ने हुजूर को रुखसत किया.
एंड एट द पॉइंट रसूलुल्लाह एट दैट पॉइंट जिब्राइल अलैहि सलातो व सलाम सेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया कि एक ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद तुम मेरे से अलग हो जाएंगे तुम क्या कैसा होंगा मेरा
he said that
ये कोई बात थोड़ी हुई
he said that you have come all the way along with me up to this point then why are you leaving me at this point this is not appropriate
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उसको मौलाना रूम ने अपने शेर में बयान फरमाया
and the response that जिब्राइल अलैहिस्सलाम gave रूम has encapsulated it in his poetry
अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बाल के बराबर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा
He says that Jibreel Sallam said the close meaning of which of that couplet is that even if I move a small distance to the breadth of a hair,
ये मेरी लिमिट है इसे आगे नहीं जा सकता.
This is my limit. I cannot go beyond.
अब इससे अंदाजा कीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम होगा.
And from this understand the position of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
वहाँ से आगे गए हुजूर पाक.
And he went beyond that point.
और हुजूर ने फरमाया कि वहाँ से मुझे एक स्पेशल तख्त लाया गया इस पे मुझे बिठाया गया था रफ-रफ पे.
He says that from there,
वो.
From there,
आपने ये भी फरमाया कि वो सब्ज था.
He said that from there, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a platform was brought for him, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that was green.
हुजूर ने फरमाया कि 70,000 हिजाबात पर तय कराए गए उसके बाद.
He said after that he went through 70,000 veils.
वहां पहुंचने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से खास तौर पर हम कलामी हुई
एंड आफ्टर गोइंग ऑल दैट डिस्टेंस देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉक टू अल्लाह
और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ
एंड सॉ अल्लाह सुभान व तआला
हजरत इब्न अब्बास की और दूसरे हजरत की राय यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर दीदार भी हुआ
एंड अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जितना अदर सहाबा ऑफ द ओपिनियन दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ रसूल अल्लाह सुभान व तआला
वहां सूफिया फरमाते हैं कि ये तो कितनी बातें हुई इसका जिक्र आम किताबों में नहीं है कुरान पाक में भी नहीं है हादिस में भी नहीं है सूफिया के कुशूफ में है कश्फ में है सूफिया अपने कश्फ से फरमाते हैं कि 90,000 बातें हुई
He says that what transpired between Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam what all was discussed the details are not there in the Quran and hadith but from the kashf of the our pious predecessors he said there were 90,000 things that were talked about
लेकिन जो बातें हुई वाजे तौर पर उसमें से एक बात नमाज की फर्जियत की हुई ये तो मालूम ही है सबको
एंड आउट ऑफ मेनी थिंग्स दैट हैपन वन थिंग अबाउट द फर्जियत ऑफ नमाज द ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ नमाज वी नो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट
और 50 नमाजें हुई
एंड इट वाज 50 सलात वाज गिवन
क्योंकि जैसे बताया गया कि हम पैदा ही हुए हैं इबादत के लिए
Because you know, as was told before, that we have been born because of for ibadat.
तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कुछ फरमाया ही नहीं किया भाई ये 50 कैसे होंगे बोलके.
That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't even complain that why 50.
अब ये कि खाना पीना कैसे होगा तो जो 50 नमाजें देगा वो खाने पीने का सेटअप भी वैसे ही करेगा
सो हाउ आर वी गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक द वन हु इज गिविंग दिस 50 सलास ही इज गोइंग टू सेट अप फॉर द फूड एंड अदर नीड्स एज़ वेल
कितने मखलूक है जिनको तो टाइम ही नहीं लगता खाने पीने को
देयर आर सो मेनी क्रिएशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू डजंट टेक मच
टाइम भूख नहीं लगती उनको
दे डोंट इवन फील हंग्री
उनको कमाना ही नहीं पड़ता
एंड दे डोंट नीड टू अर्न
कितने मखलूक इंसानों के अलावा कितने मखलूक है जो कमाती है
अदर देन ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी अदर क्रिएशंस अर्न
तो ये सारा सेटअप तो हमने खुद भी तो लगाया हुआ है ना
अपने साथ सेटअप इज समथिंग दैट वी हैव पुट ऑन विद
क्योंकि इसके बगैर हमें मजा ही नहीं आता था
विदाउट वी डोंट हैव एनी
बाजी चीजों में इंसान को मजा थोड़ी मशक्कत में ही आता है
समटाइम्स अ पर्सन फील्स अ टेस्ट इन ओनली आफ्टर सम सैक्रिफाइस
बनी इसराइल को जब मन्नो सलवा मिलने लगा था तो उनको मजा नहीं आ रहा था
व्हेन बनी इसराइल वाज गेटिंग मन्नो सलवा फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला दे डिडंट लाइक इट
वो कहने लगे प्याज चाहिए
दे सेड दैट वी नीड ऑनियन
दाल चाहिए
वी सेड दैट वी नीड लेंटिल्स
अदरक लहसुन चाहिए
एंड वी नीड गार्लिक एंड जिंजर
पूरा अपने पास का जो किचन है ना वो गिना दिया हमने
सो दे बेसिकली स्टार्ट एन्यूमरेटिंग आवर होल किचन
उनके बयान से पता चलता है कि वो इंडियन पाकिस्तानी थे वो क्योंकि अदरक लहसुन तो अपने पास ही है
He said that from this it feels like they are Indian Pakistanis.
Bakliha, wakisaiha, wafumiha, wadasiha, wabasaliha. ये सब अदरक लहसुन प्याज ये अपना पूरा किचन गिनवा दिया.
He said that they all asked about things like garlic and ginger and other things which is like our kitchen.
खर मैं ये कह रहा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें सरकार को दी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 के 50 एक्सेप्ट फरमा ली
दिस इज व्हेन 50 सलात वाज गिवन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड ऑल 50
उलमा ने फरमाया है कि वो जगह ऐसी थी वो मकाम ऐसा था वो हाल ऐसा था वो इस्तिग़राक की कैफियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी थी आप पर तौहीद का इतना गलबा था नूर तौहीद का इतना गलबा था कि 50 ने अगर 50,000 भी दिए जाते तोहफा है वो तो मना थोड़ी किया जा सकता था
He says that the position and the condition in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there completely encapsulated with the awe of Allah subhanahu wa ta'ala. He said that position was sun, not just 50, but even 50,000 salah were given because it was given as a gift. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have accepted it.
भई अगर आपको कोई $50 दे रहा हो, उसके बाद $500 दे दे, उसके बाद $1,000 दे दे, उसके बाद $5,000 दे, आप मना करोगे क्या?
So if somebody is giving you a gift, if they give you $50 and after that they increase it to $100 and $500, $1,000, would you say no to it?
जब वापस आए तो सब पैगंबर फिर दोबारा मुलाकात के लिए इंतजार में भी थे.
So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came back, all the Anbiya sallallahu alaihi wasallam were waiting to meet him.
Musa alaihi salam आगे बढ़ के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पूछे.
Musa alaihi salam went forward and started asking what happened.
तो फिर Musa alaihi salam से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यार 50 नमाजें मिल गई.
Musa alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I got 50 salat.
हो Musa alaihi salam जहां पर थे वो कैफियत अलग थी.
Because where Musa alaihi salam was there, the condition was different.
वो भी आसमानों में थे.
Even though it was in heavens.
वो पैगंबर हैं.
He is a prophet.
बड़े मर्तबे के हैं.
He is of a very great position.
लेकिन उस मेराज का जो खास वाक्य हुजूर के साथ पेश आया था वो और ये जो वहां ठहरे हुए थे वो जमीन आसमान का फर्क होता है ना.
इंसिडेंट दैट हैपेंड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोइंग एंड मीटिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
हां हुजूर ये बात ये गड़बड़ हो जाएगी देखो वापस जाओ.
ही सेड दैट मूसा अलैहिस्सलाम सेड दैट और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो बैक इट विल बी
बेटर. मैं बनी इसराइल को भुगत चुका हूं.
आई हैव ऑलरेडी सीन बनी इसराइल.
उनसे दो नहीं पढ़वा सका हूं.
ही कुड नॉट आई कुड नॉट मेक देम प्रे टू सलात.
हदीस में बात आता हूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो महीने दो नमाजें उनसे मैं रोज की नहीं पढ़वा सका हूं.
इज इट इन द हदीस मूसा अलैहिस्सलाम सेड दैट आई कुड नॉट make them pray salah two times.
Hazrat ye bahut ho jayega.
He said Hazrat this will be very much for your ummat.
To aap sallallahu alaihi wasallam itne shafiq the apni ummat par ki us situation mein us condition mein us halat mein bhi wapis gaye.
He was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so shafiq for his ummat that even in that condition he went back to Allah.
Aur Allah taala se guzarish ki ke Hazrat thodi si takhfif farmaye.
And he requested Allah subhanahu wa taala to reduce it.
To phir Allah ne 10 kam kar diya.
And Allah subhanahu wa taala reduced it.
Phir dobara bheje gaye.
And he went again.
Phir 10 kam kar diye.
And reduction for 10.
Phir dobara bheje gaye.
He went again.
Phir 10 kam kar diye.
And reduced 10 again.
Aur aakhir martaba mein Allah ne 10 ke bajaye 5 kam kiya.
And after for the last 10 Allah subhanahu wa taala reduced it to 5.
उसमें फिर ये भी अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया कि मेरे पास बात बदलती नहीं.
एंड आफ्टर दिस अल्लाह सुब्हान व तआला आल्सो गिव इंडिकेशन दैट वी डोंट चेंज थिंग्स.
इसका मतलब ये था कि अल हसनतु बि अशर अमसालिहा पांच पढ़ना लेकिन 50 का ही सवाब मिलेगा.
एंड द मीनिंग ऑफ दिस वाज यू प्रे 5 बट वी विल गिव यू द रिवॉर्ड फॉर
50. तो मूसा अलैहि सलाम तो इस पांच को भी माफ कराना चाहते थे.
मूसा अलैहि सलाम और कम करा लो. गेट दिस रिड्यूस इवन बियॉन्ड 5.
हां तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे शर्म आती है.
ही सेड दैट नो आई फील शाय गोइंग बैक.
इतना तो मैं उम्मत से करवा लूंगा.
ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट
मेरी उम्मत मान जाएगी.
ही सेड माय उम्मा विल ओबे दिस.
हां उम्मत को समझाने की जरूरत है.
एंड जस्ट नीड टू एक्सप्लेन टू द उम्मा.
अगर हमारी बहनों को हमारे भाइयों को अगर समझ आ गई कि नमाज की हकीकत क्या है नमाज का नूर क्या है तो इनके लिए पांच तो कुछ भी नहीं होते.
He says that if the brothers, sisters and brothers understand what the reality and the noor of the salah, five is not at all a big thing.
कितनी बहनें हैं माशाल्लाह जो हमारी दावत के काम में लगी हुई होती हैं फिर उसके बाद उनसे पांच नमाजें क्या उनसे कभी तहज्जुद नहीं छूटती.
And as you see so many sisters mashallah who are involved in the effort of dawat not just five salah even they don't miss the tahajjud.
उनसे इशराक और चाश नहीं छूटती.
They don't miss इशराक and चाश.
वो भी नहीं वो फर्ज नमाजें क्या छोड़ेंगी उनसे तो ये नमाजें भी नहीं छूटती.
What how can they you know miss their first salah even they don't miss the nafil salah.
ये ताल्लुक की बात है.
Because this is something to do with the relationship with Allah.
औलिया अल्लाह और सूफिया किराम बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले जो थे उनकी जो कैफियत होती थी उनके लिए नमाजें क्या थी छोड़ सकते थे नमाज को.
He says that the condition that our pious predecessors won, what do you think about their condition? Would they ever miss their salah?
हजारों लाखों डॉलर उनके सामने फेंक दिए जाएंगे तुम एक नमाज छोड़ दो उनसे नहीं होगा.
If you even you know give them you know thousands and hundreds of thousands of dollars and ask them to miss one salah, they will not be able to do.
हम तुमको बादशाह बना देंगे पूरी दुनिया की हुक्मरानी दे देंगे तुम नमाज छोड़ दो उनसे नहीं हो सकता.
He said that we'll make you the king and we will give you the kingdom that the whole world live your salah, they will not be able.
ये है ना ये फैज़ नबवी बोलते हैं इसको नूरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत का फैज़ बोलते हैं.
This is the faiz of the.
ये जो कैफियत होती है अंदर की.
This is the condition that a person has inside.
जिसके अंदर अल्लाह ताला से एक ऐसा ताल्लुक बंदा अपने अंदर बांधता है बंधा हुआ उसको महसूस होता है और माइल होता है उसका उसकी तबीयत का रुझान ऐसा होता है कि वो बंदगी पर चलता है.
The condition that a person has in him and the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala that he fulfills the commands and responsibilities of being the abd of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the faiz e nabuwwat.
Uske baad huzur e pak sallallahu alaihi wasallam ko jannat ka muayana karaya gaya.
And after that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did the inspection of jannah.
Jahannam ka muayana karaya gaya.
Inspected the jahannam.
Baaz riwayaton mein aata hai ki pehle hua ye baaz riwayaton mein aata hai ki baad mein hua baaz mein ye hai ki jaate hue bhi hua aate hue bhi hua.
And in some riwayat says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inspected jannah and jahannam before going to Miraj and after and in some both the ways that going and coming back Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inspected बहुत जन्नत जहन्नम.
और सिर्फ जन्नत और जहन्नम का मुआयना नहीं एक खास बात और हुई है वो ये है कि जन्नत में और जहन्नम में जो सजाएं जन्नत में जो नेमतें हैं जहन्नम में जो सजाएं हैं वो किन किन अमलों पर किस किस तरह की सजाएं हैं उसकी डिटेल दिखाई गई.
इट्स नॉट जस्ट दैट ही इंस्पेक्टेड जन्नत जहन्नम बट इन जन्नत व्हाट आर द नेमत्स एंड बाउंटीज द पर्सन विल एंजॉय and in Jahannam, what are the punishments and the type of the punishments and the reason for which the person has been given that punishment. Even those details were shown to Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
If somebody misses salah, what will be the punishment for
them?
Who take the wealth of the orphans, what will be the punishment for them? The person who eats the interest, takes interest, what is the punishment for them? The person who does not fulfill their responsibilities, what is the punishment for them? Rasulullah says the hadith, the close meaning of which I saw, there is a bundle of sticks that a person is taking it on his head.
And
because it was heavy, he is not able to lift it.
And
he keeps putting more sticks onto it.
And
then he keeps making effort to pick it up.
फिर नहीं उठा पाता
he could not make
उसमें
it.
और भरता है
and then he keep adding to it.
जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है
He's
जो इस मुसीबत में है
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिब्रील who is this who is in this condition
फरमाया कि वो है जो एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता और एक लेता है
he is the person that who could not fulfill one responsibility he takes another
फिर वो दूसरी को नहीं निभा पाता ना पहली को निभा नहीं पाया तो दूसरी को कहां से और दूसरी और पहली को दोनों को मिला के जब उसे उठाया नहीं जाता वो बोझ उसका हक अदा नहीं होता और एक बोझ और उस पर डालता है
this person even though he cannot fulfill first responsibility he has taken the second one now he cannot fulfill first and second, now he's taking the third one.
एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखलाया सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूल अल्लाह सुभान व तआला shown each and everything to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आयतुल कुबरा لقد راى من ايات ربه الكبرى अपने परवरदिगार की बड़ी-बड़ी निशानियां देखी
and his रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the close meaning of which that I have
seen कुरान पाक की आयत है
the Quran
मेराज के बारे में
the ayat of the Quran the close meaning of which is that रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said that I have seen big signs of Allah सुभान व तआला
हफ्ता अल्लाह ने फरमाया कि लकद रआ देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियों को
द अल्लाह सुभान व तआला सेड द क्लोज मीनिंग ऑफ व्हिच दैट अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सीन द बिग साइंस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला
तो जो कुछ वही के जरिए से आप बताते रहे वो सारा मुआयना कराया गया
दैट व्हाटएवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज बीन टीचिंग थ्रू द वही All of that was shown to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम हमारी खصوصियत ये है कि अगर हम आज आखिरत में जाके देख लेना उसके बाद हमारा ईमान मोतबर नहीं होता
He said that for us, if we go into the akhirah and see it, the
iman is not valid.
Because once you see it with your hands, the test is finished.
Iman ka taluq ghaib par hai.
The relation of iman is with unseen.
Mushahide ke baad mein nahi hai.
Once you see it, there is no iman.
Isliye Firaun ko jaise azab nazar aaya, wo iman wala ho gaya tha.
When Firaun saw the punishment of Allah coming, he became the person of
iman. Aman tu bi Rabbi Harun wa Musa. Main Musa aur Rabb ke Harun par iman lata hu.
And he said the close meaning of it that I believe in the Rabb of Musa and Harun.
Jibril Islam ne kaha al ana waqad asita qabl ab karta hai iman ab lata hai iman sari zindagi nafarmani karta raha.
Jibril Islam said the close meaning of it is you are accepting now that in the whole life you have been disobedient.
Al ana waqad asita qabl ye Quran Pak ka jumla hai lekin naqal kiya gaya unka.
He says that even though this is the word of the Quran but this is something that's related to
ye bataya ye ja ulama ne yahi farmaya ki jab ghaib jo hai na khul jata hai to phir iman mutawar nahi rehta uski zarurat nahi rehti phir.
He says that when a person you know sees unseen then there is no value of iman left.
इसी वजह से जब सूरज जो है बजाय मशरिक के मगरिब से निकलेगा उसके बाद किसी का ईमान मोतबर नहीं होगा
सो दैट्स व्हाई व्हेन द सन इंस्टेड ऑफ कमिंग यू नो इंस्टेड ऑफ राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट व्हेन इट स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट देन नोबडीज ईमान विल बी
तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा
एंड द डोर ऑफ तौबा विल बी क्लोज्ड
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप अंदाजा फरमाइए उनकी मारिफत का मारिफत का अंदाजा देने बोला ये बात कि उनके लिए गायब और हुजूर दोनों बराबर थे
एंड जस्ट टू गिव द रिकॉग्निशन ऑफ द रियलाइजेशन दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड दैट फॉर हिम सीन एंड अनसीन बोथ वर सेम
जाके देख कर आए
बिकॉज़ ही हैज गॉन एंड सीन इट
उनका बोलना ही हमारे लिए काफी था
ही इज जस्ट सेइंग इट वाज इनफ फॉर अस
उनका बोलना हमारे देखने से भी ज्यादा हमारे लिए बस है
ही इज सेइंग वाज मच मोर रिलायबल फॉर अस देन आवर ओन सीन
हमारे अपने हाथों से किसी चीज को फील करने से ज्यादा ताकतवर है
एंड ही इज सेइंग इज मच मोर रिलायबल फॉर अस देन आवरसेल्फ फीलिंग समथिंग विद आवर हैंड्स
देखे भी फिर देख कर भी आए बोले भी और देख कर भी आए
ही हैज सेड एंड ही आल्सो कम बैक आफ्टर सीइंग इट
अब उनके इल्म का अंदाजा कीजिए
जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ द इल्म ऑफ रसूलुल्लाह
उनकी मारिफत का अंदाजा कीजिए
रियलाइज द मुकाम ऑफ द रिकॉग्निशन
अल्लाह पाक के पास उनकी महबूबियत का अंदाजा कीजिए
जस्ट इमेजिन दैट हाउ ही बिलव्ड ही वाज विद अल्लाह सुब्हान
इससे अंदाजा कीजिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हमें कितना काम करने की जरूरत है
जस्ट थ्रू दिस इमेजिन दैट हाउ मच एफर्ट वी नीड टू मेक ऑन मुहम्मद
कि अल्लाह के रसूल मानने के हिसाब से हुदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में किस-किस एतबार से बिठाना है
इट सेज दैट व्हेन वी बिलीव that he is the rasul of allah subhanahu wa taala how we need to bring it into our heart
kaisa unki baaton ka yaqeen dil mein lana hai
how much of yaqeen should we have of his words in our heart
kaise unki talimat ko apne andar observe karna hai
how we should be observing his teachings
और कैसे उनकी तालीमात पर मेहनत करना है.
हाउ शुड वी बी मेकिंग एफर्ट ऑन हिज टीचिंग्स.
अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है.
हाउ वी शुड मेक इट एज अ रूटीन इन आवर लाइफ.
और कैसे उनकी एक एक अदा एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी का वतीरा बनाना है.
एंड हाउ वी मेक दैट एवरी सुन्नत ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट ऑफ आवर लाइफ.
तो कैसे अपने आप को गोया फना कर देना है उनमें.
हाउ वी शुड बी काइंड ऑफ पुटिंग फ्लैटिंग आवरसेल्फ इन टफ रसूल.
उसके एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी मेहनत का मैदान है.
एंड दैट्स व्हाई थ्रू दिस दैट लाइक दिस द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज द टारगेट ऑफ आवर एफर्ट.
इसलिए दावत के अंदर इस ईमानियत का मुजाकिरा इसीलिए किया जाता है ताकि ये हमारे ईमान में ताजगी आती रहे.
एंड दैट्स व्हाई थ्रू द एफर्ट ऑफ दावत वी डू द मुजाकिरा ऑफ दिस सो दैट आवर ईमान गेट्स रिफ्रेश्ड.
और ईमान में कमाल पैदा होता रहे.
एंड देन वी गेट द कमाल इन
और अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ता रहे.
एंड आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हान व तआला
और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बढ़ता रहे.
एंड आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्रीजेस.
हत्ता के आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में डूब जाए.
Until the person gets drowned in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
हमारे वाली साहब फरमाते हैं कि जहां हो तू हो वहीं ला इलाहा इल्लल्लाह.
My respected father used to say, wherever you are, that is where it's la ilaha illallah.
हाँ, सहाबा जहां थे वहीं ला इलाहा इल्लल्लाह था, वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था.
Wherever the sahaba were, that's where was la ilaha illallah Muhammadur.
सहाबा से गैर मुस्लिम पूछते तुम क्या चाहते हो, तो बोलते थे कि तुम हमारे जैसे हो जाओ.
When the disbelievers used to ask sahaba radhiyallahu anhu ajmain, what do you like from us? They used to say, be like us.
सहाबा अपने को बड़ा नहीं समझते थे.
सहाबा never thought that they were big people.
ये जुमला इस माने में था कि जब तुम हमारे जैसे बनोगे तो तुम हुजूर के जैसे ही हो जाओगे.
It was not that they were boasting about themselves, but this sentence was, when you become like us, you will be like Rasulullah.
क्योंकि हम तो है ही नहीं, हम तो हर दरमियान में से हट गए हैं.
And says that we have nothing, we have just moved ourselves.
हम तो किसी की कॉपी हैं.
And we are copy of somebody else.
हम तो किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं.
And we are representing somebody.
हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना, बात, चीत, मामलात, माशरत, अखलाक, इबादत, शकल, सूरत, सब में हमको उनको सहाबा किराम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती.
He says that our everything in our life, our eating and getting up and walking and sleeping and our dealings and everything, they used to see the reflection of life of
sahaba kiram. Aina the jisme se sarkare do alam sallallahu alaihi wasallam nazar aate the.
Sahaba raziyallahu ta'ala anjumain were the mirror in which you can see the reflection of rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aina jo hai na numaish karata hai dusre ki.
Aina the mirror basically shows the reflection of something else.
उलमा फरमाते हैं कि एक ईमान वाला भी सारी कायनात को ऐसे ही देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुमाइश कराते हैं इस कायनात की चीजों के जरिए से.
सो दिस इज द पर्सन ऑफ ईमान, ही लुक्स इनटू द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स एग्जैक्टली द सेम वे दैट ही इज सीइंग द रिफ्लेक्शन
अल्लाह की कुदरत.
He's seeing the qudrat of
Allah. Allah ka ilm.
He's seeing the knowledge of Allah.
Allah ki hikmat.
He's seeing the hikmat of Allah.
Allah ki badai.
And he's seeing the greatness of Allah.
Allah ki mazbooti.
And he's seeing the strength of
Allah. Allah ki quwwat.
And he's seeing the strength of Allah.
Jitni kainat ke zariye mein se cheeze nazar aa rahi hai hame, kainat mein kahan hai? Nahi hai na? तो ये वही असमा और सिफात है अल्लाह पाक की ये जो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ कराने के लिए रखी गई है. ये सिलसिले मारिफत खुदावंदी है.
He says that all these things that you see in the universe, this does not belong to the things of the universe, but rather they are reflecting these attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and they have been put in the universe so that through this we can recognize.
ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए दावत का पहला मौजू है.
That's why la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is the first topic of da'wah.
इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया था कि या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर. अरे मुद्दसिर उठो और डराओ लोगों को और अपने रब की बड़ाई सुनाओ.
He says that that's why Allah subhanahu wa ta'ala said to Rasul sallallahu alaihi wasallam, the close meaning of which, O Muddassir, get up and warn the people and talk to them about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala.
नमाजों की पाबंदी इसीलिए करना है.
That's why we should punctual with our salat.
इबादत अल्लाह ताला ने पांच वक्त की इबादत हमारे जिम्मे लगा दी.
So Allah subhanahu wa ta'ala has made the five times of ibadat.
अल्लाह की मर्जियात का इल्म सीखना है.
And we need to understand what the wishes.
और अल्लाह के नामर्जियात से भी वाकिफ होना है ताकि उनसे बचा जाए.
And we also need to understand the dislikes of Allah subhanahu wa ta'ala so that we can protect ourselves from.
और जब इल्म का लफ्ज बोला जाता है, इल्म की इंसान के लिए इल्म की जो फजीलत है वो इसी इल्म की है जिसमें अल्लाह की मर्जियात और नामर्जियात को जाना जाए.
And whenever the word इल्म is used, it is exactly in this reference that where we understand the likes and dislikes of Allah subhanahu wa
ta'ala. isliye jab ilm seekhne ka hukm diya huzur pak sallallahu alaihi wasallam ko allah ne to farmaya bi ismi rabbik iqra bi ismi rabbik apne rab ke naam padho.
He said that when Allah subhanahu wa ta'ala commanded rasulullah sallallahu alaihi wasallam to acquire knowledge, he said that acquire knowledge and learn the words.
Hatani humne ilm ke naam se kidhar kidhar apna zehen chala diya.
Unfortunately, we have gone so many different ways in terms of knowledge.
Ilm ka matlab hai apni zindagi ke anjaam ko janna.
The meaning of ilm is to understand what is going to happen to our life.
अपनी जिंदगी की कामयाबी नाकामी की तफसीलात को जानना.
अंडरस्टैंडिंग द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ आवर लाइफ.
जिंदगी का अंजाम होने के बाद में जो जन्नत की तफसीलात हैं और जन्नत में पहुंचाने वाली तफसीलात हैं, जो जहन्नम की तफसीलात हैं और जहन्नम में पहुंचाने वाली तफसीलात हैं, उनको जानना.
After end of our life and the jannah and the things that will take us to jannah and jahannam and the things that will take us to jahannam, knowing the details of this.
Muhammadur Rasulullah ko janna.
Then understanding Muhammadur Rasulullah.
Rasul ko janna ke Rasul ki meaning aur matlab kya hai.
To understand what Rasul, what is the meaning of Rasul.
तो अल्लाह का जब ये रसूल है तो क्या मतलब बन रहा है बात का.
सो इफ ही इज रसूल ऑफ अल्लाह, व्हाट डज इट मीन.
जब अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रसूल, जाहिर है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर कौन बचेगा. कैसे कोई आदमी रिसालत के इल्म ईमान से बच सकता है.
He says that if he is representative of Allah subhanahu wa ta'ala, representing Allah subhanahu wa ta'ala, how can you be saved yourself or how can you be oblivious of the ilm of risalat.
तो इसलिए और अल्लाह किससे नाराज होते हैं, किससे राजी होते हैं, वो जानना.
And then understanding that who Allah Subhanahu wa Taala is happy with and who Allah Subhanahu wa Taala is not happy with.
Allah ke naam kya hain, Allah ke sifat kya hain, Allah ke kaam kya hain, wo janna.
What are the names of Allah Subhanahu wa Taala, attributes of Allah Subhanahu wa Taala, and deeds of Allah, works of Allah Subhanahu wa Taala, that we need to understand.
Isiliye tahqeeq ka jazba aa jaye.
That's why we need to get this inquisitiveness.
Aur deen ka ilm aa jaye.
And we need to get the ilm of deen.
Aaj hamare bachchon aur bachchiyon ke bare mein ek zehen mein baat aayi, arz kar deta hu. Is cheez ke janne ka naam ilm-e-deen hai.
And this is basically what is ilm-e-deen.
हाफिज बना देने को बाज़ लोग इस पर किनात समझते हैं.
एंड पीपल अंडरस्टैंड, पीपल थिंक दैट मेकिंग हाफिज इज इनफ.
हाफिज होना बहुत बड़ी बात है.
बीइंग हाफिज इज अ बिग थिंग.
बहुत बड़ा शर्फ है.
इट इज अ वेरी बिग ऑनर.
बहुत बड़ी इज्जत की चीज है.
दिस इज ऑफ अ वेरी बिग ऑनर.
मगर एक बच्चे को रटा देंगे आप कुरान पाक, तो उसको क्या पता चला कि क्या है.
He said that if you just make him memorize, then what does he know what it is?
और यहाँ के बच्चों के अंदर लॉजिक है.
And there is logic in the kids of this country.
अपने इंडियन पाकिस्तान के बच्चों के ऐसे नहीं है मामला यहाँ के बच्चों.
It's not like the kids of Indian Pakistan.
तो या तो उनको why जब तक why नहीं समझ में आया मानते नहीं वो.
And the, until they don't understand why they don't recognize.
How नहीं समझ में आया मानते नहीं वो.
Until they don't understand how.
उनके दिमाग को अपील ना करे मानते नहीं वो.
Until they doesn't obey their brains, they don't obey it.
तो हमारी कम समझी का नतीजा ये बना कि हम हाफिज बना के ये समझ जाते हैं कि हमने दीन के इल्म को सिखाने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी.
That's why unfortunately we think that once we made them hafiz, we have fulfilled our responsibility of teaching them ilm of deen.
Unko asal alim banane ka hai.
We asal actually have to make them alim.
Agar aapke paas do ek hi opportunity hai, ek hi mauka hai, option hai aapke paas ki ya hafiz bana sakte hain ya alim bana sakte hain. Hafiz mat banaiye, yahan par alim banaiye.
He says that if you only have one option, either you can make them hafiz or alim, then don't make them hafiz.
Kyunki alim banega to waqif to ho jayega ki nahi hai kya deen.
Because he becomes an alim, then he will come to know what deen is.
Aur agar hafiz bana chuke hain to alim to banana hi banana hai aapko.
And if he has become a hafiz, then you have to definitely alim
ke bagair nahi chhodna hai aapko.
And without alim, don't leave them.
ये इस बात को समझो जरा कि भाई हम जब दीन को समझते हैं तो हर चीज में समझने का है ना, तो हम इल्म हासिल करना जो समझ रहे हैं हम, तो उसमें इस बात का जानना बहुत जरूरी है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले में ये पूरी बात है.
He says that that's why we need to understand that whenever we talk about acquiring knowledge, we need to understand that and this is all encompassed in one statement of
माँ बाप की जिम्मेदारियों का बयान है एक हदीस में.
In one hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talked about responsibility of parents.
उसमें दूसरा जो हक बयान किया गया है वो एक जुमला है. चूंकि टाइम ज्यादा हो गया अपने पास, तो मैं इंशाल्लाह तआला जल्दी खत्म करता हूँ. एक जुमले को सुन लो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. हुजूर फरमाए वयुअल्लिमुहुल किताबा इदा अकला.
He said that one of the sentences in that hadith is this was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said.
वो है कि सिखलाए उसको किताब जब उसको अकल आ जाए.
He said teach him a book when he is come of the wisdom.
अकल आएगा मतलब क्या है. हम जब मेमोराइज कराते हैं तो उसका ताल्लुक ताक़ुल से नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ से है. हिफ्ज करना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है.
He says that what does it mean that when will he be a person of interest, that when he memorizes it is with memorization, it's not understanding.
Authentic लोगों के जरिए से दीन का इल्म हासिल करना.
Through the authentic ulama and getting the knowledge of deen.
हाँ, बगैर authentic के भी गड़बड़ हो जाती है.
If you don't have authentic, then that will also lead to
problems. और self से भी गड़बड़ हो जाती है.
And with self learning also that will lead to problems.
और ऐसे sources को इस्तेमाल कर लेना जो फसाद से भरे हुए हैं वो तो गड़बड़ के ही हैं.
I said that if using those sources with that filled with facade and fitna, that's also a problem.
तो उससे भी बचना है.
So we should save ourselves from that as well.
तो इस वजह से क्या है, आलिम का कोर्स जरूरी है.
That's why the course.
अपने बच्चों को इल्म दीन से वाकिफ कराना बहुत जरूरी है.
That's why we need to make sure that our kids know the ilm.
बच्चों को भी और बच्चियों को भी.
Both boys and girls.
और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता. जो हाल शिकागो का वही हाल न्यूजर्सी न्यूयॉर्क का, जो हाल न्यूयॉर्क न्यूजर्सी का वही हाल शिकागो का, और पूरे अमरीका के अंदर बच्चों का जो हाल चल रहा है. कितने लोगों ने अपने बच्चों को हाफिज करा के देखा, कैसे उसके हालात सामने आए. आप लोगों को मैं हिफ्ज के मामले में हौसला शिकनी नहीं करना चाह रहा हूँ और उसमें सुस्ती नहीं करना है, लेकिन यहाँ जो मिस्टेक हो रही है वो बताना चाह रहा हूँ.
They say that the conditions that we have seen in Chicago, obviously those conditions are similar to what you would see in New York, in New Jersey, and all over thing. I don't want to discourage you about the hifs, but I just want to tell you what the reality on the ground is.
और कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं?
And where we are making the mistake.
तो इस वजह से इल्म हमें भी हासिल करना है और अपने आने वाली नस्लों में दीन के इल्म को सही मुंतकिल होना है, कराना है.
एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू एक्वायर द नॉलेज एंड वी आल्सो मेक एफर्ट दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन एक्वायर नॉलेज एज़ वेल.
और इसी तरह अखलाक पर मेहनत करना है.
सिमिलरली वी हैव टू मेक एफर्ट ऑन
कि हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाए.
दैट आवर कैरेक्टर गेट्स बेटर.
सिर्फ नमाजों की पाबंदी कर लेने से हमें नजात नहीं मिल जाएगी, बहुत पकड़ होने वाली है दूसरी चीजों में भी.
दैट इज जस्ट बाय परफॉर्मिंग सलाह रेगुलरली वी आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद इट. देयर विल बी यू नो there will be the accounting of other things as well.
थोड़े से बदअखलाकी की वजह से पता नहीं कितने साल हर साल की नमाजें दूसरों को दे देनी पड़ेंगी.
And with little bit of bad character, we have to give away, you know, years and years of our salah to others.
इसलिए अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल ज़रूरी है.
That's why we should control our tongue.
अपने बड़ों के लिए भी, अपने छोटों के लिए भी
उसूल. For both our elders as well as the youngsters.
आमतौर पर बड़ों की ज़ुबान थोड़ा सा वो अपने आप को डोमिनेट समझ के बाइख्तियार समझ के जल्दी खुल जाती है निस्बतन, इसलिए उनको भी बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है.
टिपिकली द एल्डर्स दे फील लाइक दे आर डोमिनेटिंग, दे काइंड ऑफ लिटिल लूज विद देयर टॉक, सो दे आल्सो नीड टू कंट्रोल देयर.
बहुत इज्जत देनी है छोटों को.
दे शुड गिव रेस्पेक्ट टू यंगस्टर्स.
और छोटों के लिए तो है ही कि वो बड़ों की इज्जत करें.
एंड इट इज देयर फॉर द यंगस्टर्स एनीवे दैट दे शुड बी डूइंग.
सब्र से काम लेना है.
वी शुड बी पेशेंट.
झेल लेना है.
वी शुड बी पेशेंट.
पी जाना है, जब्त कर लेना है.
एंड वी नीड टू बेयर इट एंड अब्सॉर्ब इट.
तभी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को पी जाने, जब्त कर लेने के फजाइल बयान फरमाए.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टॉक्ड अबाउट द फजाइल एंड वर्चूज ऑफ टेकिंग इन द एंगर.
हां, गुस्से को पी लेने वाले के लिए जन्नत के बीच में महल मिलने वाला है.
दिस इज द पर्सन
हु वसतुल जन्ना.
The person who forces and subsides his anger, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said that he will get a palace right in the middle of Jannah.
तो अपने बड़ों के साथ में भी, अपने बराबर वालों के साथ में भी, अपने छोटों के साथ में भी, हमारी जुबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे और हमारे आंखों के इशारे से तकलीफ न पहुंचे, हमसे तान तशनी से हमारी जुबानें महफूज हों और मामलात की खराबी से, तकलीफ पहुंचाने वाले मामला चीजों से हमारी हिफाजत, हमारा अपने को बचाना बहुत जरूरी
है. So that's why even with the elders or peers or youngsters, whoever that might be, either with our words, whether it's our, you know, signs or for eyes or whether it is our talk, whatever that is, we need to make sure that we protect ourselves from, you know, causing any harm to others.
Aur ye sab sirf Allah ki raza ke liye.
And all has to be done only for the pleasure of Allah.
Aur ye sab hum apne se bande ho jaye aur sari duniya mein Allah ki bandagi aam ho jaye.
And he said that so we become the slave of Allah and the slavery of Allah.
Aur hum sachi ummati ho jaye huzur ki aur sari insaniyat sachi ummati ho jaye huzur ki.
We become the true follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the whole mankind becomes a follower of Rasulullah.
Uske liye hamari jaan maal sab lag jaye.
And for that we spend our time and wealth and everything.
Is duniya mein hame sirf enjoy karna nahi hai.
We are not here just for enjoyment.
और enjoyment की तलाश में नहीं रहना है.
And we shouldn't be searching for the means of enjoyment.
मुसलमान को बता दिया गया है कि मजे करने के लिए जन्नत आ रही है आगे.
And it has been mentioned to the Muslim that you will see Jannah coming in the future to fulfill your enjoyment.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है. जन्नत तो असल मजा तो जन्नत में है.
The actual enjoyment is in paradise.
ये दुनिया तो मेहनत करने की जगह है.
This place is for, the dunya is place of effort.
बहुत temporary है.
And this is very temporary.
बहुत आरजी है.
And this is very temporary.
बहुत फना हो जाने वाली है.
And this is going to get destroyed.
पता भी नहीं चलेगा कि कब ये वक्त निकल गया.
And we would not even realize how we will be finishing time.
अब जिनके 50 साल गुजर गए उनसे पूछो कि वो 50 साल कहाँ हैं?
You just ask somebody who has spent 50 years, ask them what they've done in 50 years.
ख्वाब था, जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था.
As they say, it's like this. Whatever we have seen was like just a dream.
ऐसी जिंदगी गुजर गई तो बकिया जो है वो भी ऐसी निकल जाने वाली.
Like these years have passed, the remaining will also
second,
pass.
Second
like
और घंटे लगेंगे.
In just, you know, seconds and hours.
पूरी जिंदगी का हिसाब आखिरत में जब आदमी से लिया पूछा जाएगा कि कितना, तो कहेंगे थोड़े से घंटे गुजार के आए वहाँ पे.
Yes, when the account will be taken to the person the hereafter, asked how much time you have spent, he will say, I've just spent few hours there.
तो ये बहुत थोड़े से वक्त के लिए है, तो इसको लंबा नहीं समझना है.
Because it is for a very short time, we shouldn't be thinking it's a very long.
और सिर्फ समझने की बात नहीं है, हकीकत भी है ये.
And it is not just we need to understand, but
हमें महसूस नहीं हो रहा.
एंड वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही इल्म दिया है.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज गिवन अस द राइट नॉलेज.
उस पे ही भरोसा करना है.
एंड वी शुड जस्ट बी बिलीविंग ऑन दैट.
हर वो बात जिसके अंदर हमारा ज़हन थोड़ा सा ले तो आगे पीछे हो, वहां ये देखने का ये मेरा इल्म है लेकिन हुजूर का इल्म क्या है इसमें?
And wherever we are a little bit hesitant, we should say that this is my knowledge, but what is the knowledge of Rasulullah?
जैसे हुजूर सल्लम का इल्म आ जाए वो सही है.
And whenever we see the ilm of Rasulullah sallam, that is the truth.
वो यकीनी है.
And that is a strong belief.
वो कामिल है.
And that is complete.
हुजूर को अल्लाह ने इल्म दिया है.
And Allah subhanahu wa ta'ala has given ilm to Rasul.
हुजूर ने दुनिया में कहीं किसी से कुछ नहीं इल्म हासिल किया है.
Rasul sallam didn't get any knowledge or acquired knowledge from anybody in this dunya.
हुजूर सल्लम को किसी हुजूर सल्लम का किसी को उस्ताद ही दुनिया में नहीं बनाया गया.
There is no one who has made the teacher of Rasul sallallahu
alaihi wasallam. ताकि ये झगड़ा ही ना रहे क्वेश्चन का.
So that there is no question that arises from.
ताकि ये पता चले कि 100% अल्लाह का इल्म है आपके पास.
So that's why everybody can recognize the knowledge that he has 100% from Allah.
और अल्लाह का इल्म यकीनी होता है.
And Allah's ilm is definite.
तो इसलिए जब हमारे इल्म में और हुजूर के इल्म में टकराव आए अपने इल्म को गार्बेज में डाल दें.
Whenever there is a conflict between our knowledge and knowledge of Rasul sallallahu alaihi wasallam, we should garbage our.
चाहे वो हमारी आंखों से दिख रहा हो.
Even though we might be seeing it with
our eyes. चाहे हम अपने हाथों से टच करके उसको महसूस कर रहे
हो. Even we might be feeling it with our hands.
ईमान इसी का नाम है.
And this is what iman.
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान का मतलब ही ये है.
Then iman and मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, this is what it means.
तो आप अंदाजा करें कि हमें कितनी मेहनत की जरूरत है इस कलमे पर.
Imagine how much we need to make effort on this kalima.
और जितनी मेहनत की जरूरत है उतने अल्लाह के रास्ते में हमको निकलना पड़ेगा.
And how much ever effort is needed, that's much how we should be going out.
उतने अल्लाह के रास्ते में हमारे घर के घर वालों के जाने को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा. उनको अल्लाह के रास्ते में भेजना होगा.
We should be sending them out in path.
हमारी औलादों को अल्लाह के रास्ते से मानूस करना होगा.
And we should be getting our kids familiarized with the effort of.
उनको भी अल्लाह के रास्ते में भेजना होगा.
We should also be sending them out in path of Allah.
अभी से उनको माहौल देना जरूरी है.
And we should be giving their environment to them from now.
बच्चियों को भी बच्चों को भी.
Both boys and girls.
इसीलिए घरों के अंदर रोजाना तालीम के हलके चाहिए.
That's why we need to have the halqa of taleem every day in our.
फजाइले अमाल के हलके रोजाना चाहिए.
And the फजाइले हलका ऑफ फजाइल अमाल एवरी डे.
ईमानियत का मुजाकरा रोजाना चाहिए.
मुजाकरा ईमान एवरी डे.
तो इस वजह से जो तरतीब हमारे बड़े दीन की मेहनत की काम की तबलीग के काम की तफसील लाते रहते हैं उस मेहनत के मुताबिक अपने आप को लाने के लिए जो मुजाहिदा चाहिए जो हिम्मत चाहिए जो कुर्बानी चाहिए उसके लिए अपने को पेश करना.
सो व्हाटएवर द तरतीब द एल्डर्स आर टॉकिंग अबाउट फॉर द एफर्ट ऑफ दीन फॉर अस टू पुट ऑन टू इट व्हाटएवर सैक्रिफाइसेस वी नीड एंड व्हाटएवर वी स्ट्रेंथ वी नीड एंड व्हाटएवर यू नो एफर्ट वी नीड टू पुट इन वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर इट.
अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए.
अल्लाह ताला गिव ऑल ऑफ अस द तौफीक टू डू द अमल ऑन इट.